नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौर। 4 मार्च 2022 के साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, यूक्रेन में रूसी आक्रामकता की निंदा के लिए यूएन महासभा में प्रस्ताव भारी मतों से पारित। यूक्रेन के अनेक शहरों में लड़ाई जारी। यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र के हिंसा की चपेट में आने से गहराई चिंता। 10 लाख से अधिक लोगों ने छोड़ा देश। मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच के लिए आयोग गठित करने पर प्रस्ताव पारित। जलवायु कार्रवाई के लिए बेहद अहम है अगले 10-15 साल। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की नई रिपोर्ट। और 1 अरब लोगों के लिए सुनाई देने की क्षमता पर असर पड़ने का जोखिम। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन में रूस के तथाकथित विशेष सैन्य अभियान से उपजी वैश्विक चिंता गुरुवार रात तब और गहरी हो गई जब यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हिंसा की चपेट में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख रफायल मारियो ग्रॉसी ने शुक्रवार को अपना एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ज़ेपोरिज्या परमाणु ऊर्जा प्लांट में हालात पर चिंता जताई है, मगर भरोसा दिलाया है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव नहीं हुआ है।
All the safety systems of the 6 reactors at the plant were not affected at all.
महानिदेशक ग्रॉसी कह रहे थे कि परमाणु ऊर्जा प्लांट में स्थित 6 रिएक्टर्स की सुरक्षा प्रणाली पर कोई असर नहीं हुआ है। परमाणु मामलों के लिए यूएन एजेंसी का आपात केंद्र मौजूदा परिस्थितियों के कारण पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, जहां से हालात पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। इसी मुद्दे पर शुक्रवार को सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाई गई जिसमें राजनीतिक व शांति निर्माण मामलों के लिए यूएन की अवर महासचिव रोजमेरी डिकालो ने परमाणु केंद्रों के इर्द गिर्द सैन्य अभियानों को अस्वीकार्य और बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया है। इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन संकट की पृष्ठभूमि में एक आपात विशेष सत्र बुलाया गया। सत्र के दौरान यूक्रेन में रूसी आक्रामकता का तत्काल अंत किए जाने की पुकार करने वाला एक प्रस्ताव भारी मतों से पारित किया गया। इस प्रस्ताव में रूस से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेन के इलाकों से अपने सैन्य बलों को तत्काल बिना किसी शर्त के हटाए जाने की मांग की गई है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने मतदान के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रस्ताव और उसकी मूल भावना के पक्ष में खड़ा होना उनका दायित्व है।
The message of the General Assembly is loud and clear. End hostilities in Ukraine now. Silence the guns now. Open the door to dialogue and diplomacy now.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि महासभा का संदेश बुलंद और स्पष्ट है। यूक्रेन में दुश्मनी का अंत हो, बंदूकें अब शांत हों, संवाद और कूटनीति का दरवाजा खुले। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने यूक्रेन पर रूस के तथाकथित सैन्य अभियान के दौरान मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच के लिए एक आयोग का गठन करने पर सहमति जताई है। इसके लिए शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया गया। यूक्रेन में हिंसा के कारण अब तक 20 लाख से अधिक लोग अपने घरों से जान बचाकर भागने के लिए मजबूर हुए हैं। यूक्रेन में मौजूदा हालात से उपजे गंभीर मानवीय संकट पर यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान की रिपोर्ट।
मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बाशलेट ने गुरुवार को अपने संबोधन में कहा कि 24 फरवरी को जो हमला शुरू हुआ उससे यूक्रेन में लाखों लोगों के मानवाधिकारों पर व्यापक असर हुआ है।
1 week ago, the Russian Federation's military attack on Ukraine opened the new and dangerous chapter in world history.
मिशेल बाशलेट कह रही थी कि एक सप्ताह पहले रूसी महासंघ के यूक्रेन पर सैन्य हमले से विश्व इतिहास में एक नया और खतरनाक अध्याय खुल गया है। सैन्य अभियान और ज्यादा तेज हो रहे हैं, जिनमें बड़े शहरों पर भी सैन्य हमले हो रहे हैं। ज्यादातर आम लोगों की मौतें भारी तोपखाने के प्रयोग, अत्याधुनिक रॉकेट प्रणालियों के हमलों और घनी आबादी वाले इलाकों में हवाई हमलों के कारण हो रही हैं। उधर यूएन रेफ्यूजी एजेंसी UNHCR के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने गुरुवार को कहा कि यूक्रेन में अर्थहीन युद्ध के कारण केवल 7 दिन में 10 लाख से अधिक लोग देश छोड़कर जाने के लिए विवश हुए हैं। अनगिनत लोग यूक्रेन के भीतर भी विस्थापित हुए हैं। यूएन प्रवासन एजेंसी आईओएम के महानिदेशक एंटोनियो वितोरिनो ने भी आगाह किया है कि यूक्रेन से जान बचाकर जाने की कोशिश कर रहे अन्य देशों के नागरिकों के साथ नस्ल, जातीयता, राष्ट्रीयता या प्रवासन दर्जे के आधार पर भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बीच संयुक्त राष्ट्र व उसके साझीदार संगठनों ने यूक्रेन में ज़रूरतमंदों और हिंसा के कारण पड़ोसी देशों में पहुंच रहे रेफ्यूजीज तक तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए मंगलवार को $1,70,000,000,000 की सहायता अपील जारी की।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी आयोग IPCC ने पृथ्वी और तमाम दुनिया पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में सोमवार को एक चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि पारिस्थितिकी विघटन, प्रजातियों के विलुप्तीकरण, जानलेवा गर्मियां और बाढ़ ये ऐसे जलवायु खतरे हैं जिनका सामना विश्व को वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण अगले दशकों में करना पड़ सकता है। डॉक्टर अंजल प्रकाश इस रिपोर्ट के मुख्य लेखकों में हैं। मैंने उनसे बात की और पूछा कि यह रिपोर्ट जलवायु कार्रवाई अनुकूलन और कार्बन उत्सर्जन में कटौती पर क्या कहती है।
तो जहां अनुकूलन जलवायु संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए मदद कर सकता है, अनुकूलन की सीमाएं जो अडेप्टेशन लिमिट है, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि ये तनाव की स्थिति में है जिसके आगे हमारा जो है अडेप्टेशन नहीं हो सकता है। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि क्या अडेप्टेशन का लिमिट है, मतलब आप कितने दिनों तक, आप कितने समय तक आप अनुकूलन कर सकते हैं, उसके बाद मिटिगेशन जो है जिसको क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की बाध्यता है हमारे पास है और जो हमारे पास संसाधन है उनको हम कैसे रिपोर्ट में शामिल कर सकते हैं, उनको कैसे हम अपने एक्शन में शामिल कर सकते हैं। तो ये बात कहती है रिपोर्ट भी ये कहती है कि संचयी वैज्ञानिक प्रमाण बहुत स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन मानव के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खतरा है और जलवायु कार्रवाई में अगर थोड़ा सा भी हम देर करें, हमारे पास एक्चुअली अगर 10 से 15 साल का समय है, अगर इससे आगे अगर हम समय कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो सामान्य मानवी को बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है।
जो तापमान की एक लिमिट है, वैश्विक तापमान में वृद्धि की एक जो लिमिट है वो आमतौर पे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत अहम मानी गई है, लेकिन अगर वो उस लिमिट को एक्सीड कर दिया जाता है तो ज्यादा उस पे नुकसानदेह असर हो सकते हैं, वो किस तरह के असर है?
जो पहले जो अनुमान था कि एक 1.5 डिग्री जो है ये टेम्परेचर इस सदी के अंत तक का अनुमान था कि ऐसा होगा, बट ये जो अभी ये रिपोर्ट आई है इसमें ऐसा लगता है कि हम 2050 तक ही या 2040 से 50 के बीच में ही एक 1.5 डिग्री जो वैश्विक तापमान है वो उसकी वृद्धि को पार कर जाएंगे। विश्व का जो तापमान है वो 1.1 डिग्री ऑलरेडी पहुंच चुका है, अब हम देख रहे हैं कि 1.5 डिग्री पहुंच जाएगा बाय 2050 क्लाइमेट मॉडलर्स का अनुमान है, और एंड ऑफ द सेंचुरी इज जो टारगेट है वो अब 2 डिग्री है। एवरी फ्रैक्शन ऑफ वार्मिंग, जरा सा थोड़ा सा भी डिग्री का वार्मिंग है उससे बहुत सारे अंतर हो आने वाले हैं हमारे विश्व के तापमान बढ़ने में। मैं आपको 2-3 चीजें गिना दूं। सबसे पहली बात तो है दक्षिण एशियाई देशों के संबंध में तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो ग्लेशियर्स जो है, जो हमारे हिमाच्छादित प्रदेश है, हमारे यहाँ हिमालय है समझिए, हिमाच्छादित प्रदेश है, ये सबसे ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइस है पोलर रीजन के बाद में ये हिमालय में ही है। अब जब तापमान बढ़ रहा है तो ये ग्लेशियर्स जो हमारे जमीनी तापमान है वो अगर एक 1.5 डिग्री होगा, हिमालयन ग्लेशियर्स में ये तापमान 2-3 डिग्री तक पहुंच जाता है डिपेंडिंग ऑन कहाँ पे आप रह रहे हैं हिमालय, तो उससे ग्लेशियर्स को बहुत ज्यादा खतरा है। एक पहले के अनुमान के करीब 10-12 साल पहले कोई मॉडलिंग एक जो अनुमान था उसमें था कि 2/3 जो ग्लेशियर्स है वो सदी के अंत तक खत्म होंगे, लेकिन अभी ये लग रहा है कि अभी बहुत जल्दी ये होने वाला है। जैसे 1.5 डिग्री प्रीपोन हो गया है, ये ग्लेशियर्स मेल्ट भी बहुत जल्द बहुत ज्यादा असर करने वाले हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब तापमान बढ़ता है तो ये यहाँ पे जो मौसमी जो तापमान है और मौसमी जो प्रभाव है उसका, उसमें बहुत अंतर आ जाता है। हम दो बातें कहते हैं इसमें, अतिवृष्टि और अनावृष्टि, तो ये दोनों साथ साथ रहने वाली है। ये जो रिपोर्ट है वो उसको बहुत जल्दी वो कहती कि ये अब कंफर्म्ड है कि ये ऐसा होने वाला है।
आईपीसीसी की नई रिपोर्ट के लीड ऑथर डॉक्टर अंजल प्रकाश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कान फोड़ू संगीत और मनोरंजन के अन्य साधनों का शोर इसकी चपेट में लंबे समय तक रहने के कारण दुनिया भर में 12 से 35 वर्ष की उम्र के लगभग 1 अरब लोगों की सुनाई देने की क्षमता के लिए जोखिम पैदा हो गया है। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
विश्व श्रवण दिवस पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में संगीत सुनने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय मानक जारी किए गए हैं और इस दिवस की थीम है जीवन की खातिर सुने, सावधानी से सुने। ये नए मानक उन सभी स्थानों के लिए लागू होते हैं जहां ऊंची ध्वनि में संगीत बजाया जाता है। दुनिया भर में लगभग 1.5 अरब लोग कम श्रवण क्षमता यानी कम सुनाई देने की अवस्था के साथ जीवन जीते हैं। ताज़ा अनुमानों के अनुसार वर्ष 2030 तक ये संख्या 2 अरब तक पहुंच सकती है। सुरक्षित श्रवण पर वैश्विक मानकों में 6 मुख्य सिफारिशें पेश की गई हैं। अधिकतम औसत ध्वनि स्तर 100 डेसिबल्स, ध्वनि स्तरों की सक्षम उपकरणों के जरिए लगातार निगरानी, आनंददायक संगीत व ध्वनि श्रवण के लिए सक्षम व आधुनिक उपकरणों का प्रयोग, लोगों को अपने कानों को आराम देने और अपनी श्रवण क्षमता को नुकसान कम करने के लिए शांत क्षेत्रों की उपलब्धता और स्टाफ को प्रशिक्षण और समुचित जानकारी की उपलब्धता।
तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।